नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोतेनबर्ग पहुंच रहे हैं। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और जर्मी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
सरकार ने कहा है कि CBSE की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है। 12वीं कक्षा के परिणामों पर आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों ने मार्किंग और उत्तीर्णता पर प्रतिशत में मामूली गिरावट पर चिंता जताई। सचिव ने बताया कि CBSE ने इस वर्ष ऐसी प्रणाली लागू की है जिससे मूल्यांकन में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। सचिव ने कहा कि CBSE ने पुनर्मूल्यांकन का शुल्क कम कर दिया है। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया कि इबोला का संकट COVID-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। नेपाल के कोशी प्रांत के सोलुखुम्बू जिले में जन्मे कामी रीता ने पहली बार 1994 में एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।